एक क्षण में स्मृति होने से यह निश्चित नहीं हो सकता कि कौन से ज्ञान का क्या स्वरूप है। ये स्मृतियों के मेल में गड़बड़ी होगी, अर्थात जितनी बुद्धियों का अनुभव है उतनी ही स्मृति होगी। ये धारणा ना हो सकेगी कि यह स्मृति किसकी है। दूसरी बात ये है कि सभी ये कहते हैं कि अमुक वस्तु को मैंने जाना, यह कोई नहीं कहता कि अमुक वस्तु को, उसके ज्ञान को, फिर उसके ज्ञान सहित ज्ञान को जाना इत्यादि। इस कारण चित्त के अतिरिक्त दृष्टा पुरुष को मानना ही पड़ेगा। पुरुष तो असंग निर्वकार अर्थात क्रिया रहित अप्रणामी है। किसी विषय को ग्रहण करने में क्रिया प्रणाम दोनों होते हैं, फिर पुरुष चित्त के विषय का ज्ञान किस प्रकार कर सकता है, यही अगले सूत्र में कहते हैं। चित्ते चित अर्थात चेतन पुरुष को आप्रति संकर्माया जो क्रिया अथवा परिणाम रहता है, तद आकार आपत्तो स्व प्रतिबंध प्रतिबिंबत चित्त के आकार की तरह आकार की प्राप्ति होने से वह बुद्धि संवेदनम अपने विषयभूत बुद्धि चित्त का ज्ञान होता है। पुरुष को जो क्रिया अथवा प्रणाम रहता है स्वय चित्त बिंबत चित्त के आकार की प्राप्ति होने पर अपने विषयभूत चित्त का ज्ञान होता है। सूत्र का भाव है यदि चेतन पुरुष निष्क्रिय क्रिया रहित निर्विकार है तो भी बुद्धि रूप हो जाने पर अपने चित्त का ज्ञान होता है। व्याख्या यद्यपि यह बिल्कुल सत है कि चेतन पुरुष क्रिया एवं परिणाम रहित किसी विषय के संबंध होने से निसंग है, तो भी विषयाकार अर्थात नाना प्रकार के दृश्य पदार्थों के प्रतिबिंब से तदाकार हुए परिणामी चित्त में प्रतिबिंबित हुआ तदाकार होकर बुद्धि व्यक्ति का अनुसारी हो जाता है। इस तरह चैतन्य प्रतिबिंबित ग्रहणी चित्त व्यक्ति के अनुकार मात्र होने से अभिन्न हुआ। जय चेतन ज्ञान व्यक्ति कहा जाता है, जैसे निर्मल जल में प्रतिबिंबित हुए चंद्रमा में अपनी चंचलता के ना होने पर भी जल रूप उपाधि की चंचलता से अपनी चंचलता दिखती है, उसी तरह चेत प्रतिबिंब बिंबत चेतन पुरुष केवल प्रतिबिंबाधार चेत के विषयाकार होने से उसी के आकार जैसा मरूम होता है। वास्तव में तो पुरुष ना तो ज्ञाता है ना भोगता है, वह तो सर्वथा निर्विकार असंग है। अगले सूत्र में इसका कारण बताते हैं। दृष्ट दृश्यो दृष्ट दृश्य उपरकतम दृष्टा और दृश्य से रंगा हुआ वो परकतम दृष्ट दृश्य उपरकतम दृष्ट और दृश्य से रंगा हुआ चित्तम चित सर्वार्थम सारे सर्व अर्थम सारे अर्थों वाला आकार वाला होता है। दृष्टा और दृश्य से रंगा हुआ चित सारे अर्थों वाला होता है। दृष्टा और दृश्य से आराम को प्राप्त चित सब अर्थ वाला हो जाता है। व्याख्या ये है कि जिसका एक का जिसका यह निजम कि जिस जित का यह निजम कि जिस पदार्थ के साथ सुगंध होता है उसके रंग में रंग कर तदाकार हो जाता है और चित तीनों गुणों की प्रथम सात्विक प्रणाम क्रियाशील एवं परिणामी जड़ सात्विकता के कारण मणि की तरह उज्ज्वल है उज्ज्वल है। चित का जी अपना स्वरूप है, चेतन पुरुष दृष्टा है, शब्द स्पर्श आदि विषय चेतन दृश्य है, ये सब चेतन अचेतन चित के विषय होते हैं। चित उपर्त होता है एवं जिसके साथ संबंध युक्त होता है उसी के आकार में पासत होता है, दृष्टा के उपराग होता है, दृष्टा से उपराग होता है, तब दृष्टा के आकार से पासत होता है, जब इंद्रियां के द्वारा दृश्य से उपरक्त होता है तब सुख दुख भोग रूप दृश्य रूप से पासत होता है। जैसे स्पटक मणि या दर्पण के पास एक नीला फूल एक लाल फूल रख दे तो वह स्पटक मणि या शीशा नीले फूल और लाल फूल के प्रतिबिंब से और अपने निजी रूप से तीन रंग वाला मालूम होता है। उसी प्रकार एक ही चित विषय और पुरुष के प्रतिबिंब से और अपने रूप से ग्राज गृहता और ग्रहण स्वरूप होकर पासता है। यथार्थ में चित भोग है, पुरुष भोगता उसके भिन्न है, ये पहले कहे आए हैं, ये पहले दस्या है। हम 24वें सूत्र विच दस रहे हैं। तत् वह चित असंख्ये वासना भी चित्रम अपि अगिनत वासनों से चित्रत हुआ भी पर अर्थम अर्थम दूसरे के लिए सहंतकारी होने से चित अनगिनत वासनों से चित्र हुआ भी परार्थ है क्योंकि वह असंतकारी है। ये वह चित अनेक वासनों से चित्रत हुआ दूसरे के लिए है क्योंकि वह असंतकारी मिलकर काम करने वाला है। व्याख्या असंतकारी वह वस्तु होती है जो अनेक पदार्थों से मिलजुल कर कार्य करने योग्य होती है, जैसे मकान छाया भोजन आदि ऐसी वस्तुएं स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि परार्थ के लिए होती है। इसी तरह चित सत्व राजतम गुणों से अंग अंगी भाव के मिश्रण से सत्व प्रधान बना है। जय भी असंतकारी हुआ तथा बाह्य पदार्थ एवं इंद्रियों के संयोग से मिलजुल कर कार्य करने की क्षमता है, वह स्वार्थ के लिए नहीं है, अपने स्वामी दृष्टा पुरुष के भोग अपवर्ग के लिए है, अर्थात सुखाकार चित अपने भोगार्थ नहीं और तत्व ज्ञानकार चित भी चित के अपवर्ग अर्थ नहीं बल्कि दोनों प्रकार का चित अपने स्वामी पुरुष के भोग उपवर्ग अर्थ है। जिस प्रकार घर का स्वामी घर में सभी पदार्थों का भोग करता है परंतु सब पदार्थों से भिन्न होता है, इसी प्रकार सुख दुख रूप भोग अपवर्ग का भोग करने वाला पुरुष सब इंद्रियों व विषयों से पृथक है। चित आत्मा को भिन्नता कहकर अब आत्मा का विशेष ज्ञान जो समाधि द्वारा होता है एवं विवेक ज्ञान से योगी आत्म स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कर लेता है तब उसकी स्थिति जो होती है उसको अगले सूत्र में कहते हैं। विशेष दर्शन आत्म भाव भावना निवृत्ति विशेष दर्शी चित्त और आत्मा के भेद को प्रत्यक्ष कर लेने वाले योगी को आत्म भाव की भावना निवृत्त हो जाती है। व्याख्या यह है कि योगी के मन में जब तक ही संकल्प कल्प रहते हैं और जब तक आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, वह सोचता है मैं कौन था, कौन हूँ, कैसा हूँगा, आदि आत्मज्ञान की भावना रहती है। इसी को आत्म भावना यानी आत्मज्ञान के विषय का चिंतन कहते हैं। जब विवेक ज्ञान द्वारा जय ज्ञान जान लेता है कि शरीर और चित्त से आत्मा भिन्न है और संशय रहित अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव कर लेता है, तो उसकी आत्म भाव भावना मिट जाती है, अर्थात चित्त में ही सारे प्रणामी को देखता है तथा उसके धर्मों से पृथक अपने को अप्रणामी ज्ञान स्वरूप पासने लगता है। जब साधक के चित्त की यह भावना होती है तभी विवेक ज्ञान प्राप्त होता है। जब विवेक ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो योगी की यह पहचान कि उसको मोक्ष मार्ग श्रवण से रोमांच एवं अश्रुपात होते हैं, कभी हंसता है आदि, जैसे वर्षा ऋतु में घास पात के जम जाने पर उसके बीज का अनुमान होता है, उसी प्रकार योगी की स्थिति में जाना जाता है कि इस योगी में विशेष ज्ञान होने से मोक्ष उन्मुख बीज पड़ा है, जो शुभ कर्मों से उदय हुआ है, उनको केवल पूर्व पक्ष में रुचि और निर्णय सिद्धांत में रुचि हो जाती है, क्योंकि शुद्ध पुरुष स्वरूप का प्रकाश हो जाता है। विशेष दर्शी का चित विशेष दर्शन के उदय पर जैसा होता है उसको अगले सूत्र में कहते हैं, तदा विवेक निमन केवल प्राग भारंग चित्तम। वो समय विवेकी चित विवेक मार्ग में संचारी होकर केवल की ओर अभिमुख हो जाता है। साधक की पूर्व अवस्था यानी चित्त की अज्ञान अवस्था में योगी का चित अविवेक मार्ग में बहता हुआ संसारी विषयों की ओर कहा बहा जा रहा था, विशेष दर्शन से वह मार्ग रुक जाता है और चित्त का प्रवाह आत्मानात्मा रूप विवेक ज्ञान के मार्ग की ओर निमन होकर कैवल प्राग पार के अभिमुख हो जाता है। सूत्र में प्राग पार शब्द ऊंचे स्थान का वाची है जिसे बांध कहते हैं। विवेक प्रवाही चित्त में व्युत स्थान की वृत्तियां भी आती रहती है, सो क्यों उसको अगले सूत्र में बताते हैं। तत् उस विवेक ज्ञान के छिद्रेशु छिद्रों में बीच बीच में अंतराल में परत अंतराणी दूसरी व्युत्थान की वृत्तियां संस्कारे प्या पूर्व के व्युत्थान के संस्कारों से होती है। उस विवेक ज्ञान के बीच बीच में अन व्युत्थान की वृत्तियां भी पूर्व के व्युत्थान के संस्कारों से उदय होती है। विवेक भेद होने के क्षणों में व्युत्थान की वृत्तियां पूर्व संस्कारों से होती है। विवेक ज्ञान में निमग्न चित्त को अपनी एवं आत्मा की भिन्नता का ज्ञान पूर्ण रूप से पासित होता है, किंतु थोड़ी सी भी शिथिलता आने पर व्युत्थान के संस्कार जो अनादि काल से बीज रूप संस्कार थे, वह फिर उन्नत होकर व्युत्थान की ममता अहंता की वृत्तियां जैसे जय मेरा है मैं दुखी हूँ आदि पैदा हो जाती है। इन्हों को प्रत्यंतराणी कहते हैं। ये पूर्ण प्रकार से तभी नाश होती है जब विवेक ख्याति अत्यंत परिपक्व अवस्था में हो जाती है, अर्थात विवेक ज्ञान में चित निमग्न हो जाता है। तब आत्मा स्वरूप एवं अपने रूप को पासता है। ऊंची अवस्था के प्राप्त होने पर वैराग की दृढ़ता से असंप्रज्ञात समाधि में चित्त भी लय हो जाता है एवं दग्ध भी स्वयं लय हो जाते हैं, तब कैवल अवस्था प्राप्त हो जाती है। उन संस्कारों का अभाव कब और कैसे होता है, इसको अगले सूत्र में बताते हैं। हानम निवृत्ति ईशाम उनकी व्युत्थान के संस्कारों की कलेशवत कलेशों की तरह उक्तम कही गई है। इन व्युत्थान के संस्कारों का हान मैंने नाश पूर्वोक्त कलेशों की निवृत्ति के समान कहा है। व्याख्या ये साधन भाग के सूत्र 10 में कह चुके हैं कि अविद्या से उत्पन्न पांचों कलेश क्रिया योग से सूक्ष्म होते हैं, पुनः परसंख्यात बवेक ख्याति और रूप अग्नि से दग्ध बीज के समान हो जाते हैं, हिरांकर उत्पादन में असमर्थ हो जाते हैं। इसी प्रकार जहां भी समझना चाहिए अर्थात बवेक अभ्यास रूप परसंख्यान अग्नि से पूर्व जन्म जन्मांतरों के व्युत्थान के संस्कार दग्ध बीज होकर अंकर उत्पादन में असमर्थ हो जाते हैं। इन संस्कारों का नाश तो चित्त का अपने कारण में लय होने पर होता है, परंतु दग्ध बीज के समान वे व्युत्थान की वृत्तियां को उत्पन्न कर सकते हैं। परिपक्व ज्ञाननिष्ठ चित्त में इनका प्रादुर्भाव नहीं होता, इसलिए विवेक ज्ञान के अभ्यास से व्युत्थान के संस्कारों का निरोध फिर निरोध संस्कारों से विवेक संस्कारों का क्षय करना चाहिए। तत्पश्चात असंप्रज्ञात समाधि द्वारा निरोध संस्कारों का लय कर लेना चाहिए, तब आनंद रूप केवल अवस्था होती है। विवेक ज्ञान से ही अपने को सिद्ध समझकर कृतार्थ नहीं होना चाहिए। निरोध अभ्यास रूप प्रसंख्यान के निरोध का जीवन मुक्त की प्रकाष्ठा विशेष अवधि रूप धर्म मेद समाधि का अगले सूत्र में वर्णन करते हैं। परसंख्याने अपि उपसिद्धस्य परसंख्यान ज्ञान से भी विरक्त है जो योगी उसको सर्वथा विवेक्याति निरंतर विवेक्याति के उदय होने से तरमेद समाधि होती है। जो योगी परसंख्यान ज्ञान से भी विरक्त है उसको निरंतर विवेक्याति के उदय होने से कर्मवेद समाधि होती है। परसंख्यान जितने तत्व परस्पर विलक्षण स्वरूप वाले हैं उनका यथाक्रम विचार करना परसंख्यान कहता है। परसंख्यात ज्ञान के उपशीद योगी का परसंख्यात ज्ञान से विरक्त का विवेक ज्ञान निरंतर प्रकाशमान होने के कारण उसको तरमेद समाधि प्राप्त होती है। इच्छा से रहत योगी को उक्षीद कहते हैं। विवेक ज्ञान के उदय होने पर योगी कलेशों के बंधनों से क्षीण होने पर सर्वज्ञ सर्व का अधिष्ठाता हो जाता है। इस प्रकार सामर्थ्य प्राप्त होने पर भी उसमें लिप्त नहीं होता और फल की इच्छा भी नहीं करता। फल की इच्छा से रहत योगी को उक्षीद कहते हैं। इस तरह वैराग शील योगी का विवेक ज्ञान का निरंतर प्रभाव बहने लगता है और उसके व्युत्थान के संस्कार के बीज नितांत पसम हो जाते हैं। ज्ञान को इस परिपक्व अवस्था को तरमेय समाधि कहते हैं। संप्रज्ञात की ऊंची स्थिति को विवेक ख्याति कहते हैं। विवेक ख्याति की परिपक्व अवस्था निरंतर बहने वाली कर्मवेद समाधि है। इसकी पराकाष्ठा का नाम परवैराग और उसका फल निर्वी समाधि है। कर्मवेद समाधि का फल कहते हैं तथा क्लेश कर्म निवृत्ति। कर्मवेद समाधि होने पर क्लेश कर्म भी निवृत्ति होती है। जब योगी को कर्मवेद समाधि सिद्ध हो जाती है तब विद्या आदि पांचों क्लेश कृष्ण शुक्ल तथा मिश्रित तीनों तरह के कर्म उनकी वासनाएं समूल नष्ट हो जाते हैं। तब योगी जीवन मुक्त होता है। शरीर त्यागने पर विदेह पद प्राप्त होता है क्योंकि कर्माशय ही आवागमन का कारण है। कर्माशय नष्ट होने पर विदेह स्थिति हो जाती है। क्लेश निवृत्ति होने पर जो स्थिति होती है उसको बताते हैं सदा। तब क्लेश कर्मों की निवृत्ति पर सर्व आवरण मल और पेतस्य सारे वर्ण मल के मल से अलग हुए ज्ञानस्य ज्ञान के चित्त के प्रकाश के अनंतवात अनंत होने से ज्ञेयम् जानने योग वस्तु अल्पम थोड़ी रह जाती है। सूत्र का भाव जब संपूर्ण क्लेश कर्म रूपी वर्ण मल से रहत योगी का ज्ञान अनंत हो जाता है। अनंत ज्ञान होने से ये जानने योग पदार्थ सब अल्प जान पड़ते हैं। व्याख्या ये है कि जिस प्रकार बादलों से टका हुआ सूरज होने पर उसका प्रकाश लुप्त प्राय हो जाता है, इसी प्रकार सत्व प्रधान चित प्रकाशशील होने पर भी राजतम मूलक विद्या आदि पांच क्लेश तथा सकाम कर्म की वासनाएं पर्दा रूप होकर उसके प्रकाश को प्रकाशित होने से बाधित होती है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश बादलों के हटने पर सब जगह फैलता है और संसार की सभी वस्तुएं दिखने लगती है, उसी प्रकार पूर्वोक्त विद्या आदि क्लेश सकाम कर्मों की वासनाएं जो पर्दा रूप होकर सत्व चित्त के प्रकाशित होने से रुकावट डालती है वे सब तर्मवेद समाधि सिद्ध होने पर नष्ट हो जाती है। चित्त का आवरण नष्ट होने पर उस चित्त को अपरमत ज्ञान प्राप्त होता है। उसके प्रकाश में जानने योग कोई वस्तु अज्ञात नहीं रहती। उस स्थिति में विषय बहुत न्यून और ज्ञान का प्रकाश अनंत अप्रसन्न होने से ये संसारिक वस्तुएं तुच्छ मालूम होती है। योगी को इस स्थिति पर बड़ा आश्चर्य होता है। धर्म में समाधि सिद्ध होने पर गुण प्रणामी होने से उनका प्रणाम अवश्य पावी। फिर योगी को पुनर्जन्म देने वाले क्यों नहीं होते वो इसको अगले सूत्र में कहते हैं। तथा मैंने तब कृतार्थ हुए गुणा नाम गुणों के परिणाम क्रम की समाप्ति हो जाती है। समाप्ति हो जाती है तब कृतार्थ हुए गुणों के परिणाम के क्रम की समाप्ति हो जाती है। सूत्र का भाव इसके बाद कृतार्थ हुए गुणों के परिणाम की समाप्ति हो जाती है। कर्मवेद समाधि उदय हो जाने पर योगी के क्लेश कर्मों की निवृत्ति हो जाती है। उस समय राजतम नष्ट होने से अनंत ज्ञान उत्पन्न होता है। वही प्रकृति के दोषों को दिखाने वाला होने से पर वैराग रूप है। इस ज्ञान के उत्पन्न होने के बाद गुणों के परिणाम उस पुरुष के लिए समाप्त हो जाते हैं क्योंकि गुणों का कर्म पुरुष को भोग अपवर्ग दिलाना है। जब तक यह काम पूरे नहीं हो जाते तब तक अपने परिणाम के क्रम को शरीर इंद्रिय आदि के आरंभ को निरंतर करते ही रहते हैं। कर्म में समाधि के पश्चात गुणों का कार्य भोग अपवर्ग का अंत होने पर अपना प्रणाम फल समाप्त कर देते हैं। उस पुरुष के लिए गुण प्रवृत्त नहीं होते, तब वे अन्य पुरुषों के भोग अपवर्ग प्रयोजन सिद्ध करने में लगे रहते हैं। क्रम का स्वरूप कहते हैं। क्षण प्रतियोगी प्रणामा प्रांत निर्ग्रहजा क्रम क्षणों का प्रतियोगी तथा प्रणाम के अंत में उसका स्वरूप जाना जाता है वह क्रम है। अल्पकाल को क्षण कहते हैं। इस तरह क्षणों के निरंतर प्रवाह में एक के बाद दूसरा तीसरा क्षण का क्रम कहलाता है, अर्थात क्षणों का विभाग करने वाला क्रम है। कोई भी वस्तु जब तक रूप से दूसरे रूप में बदलती है या उसी रूप में रहते हुए प्राणी हो जाती है तो उसका प्रणाम बदलना एक क्षण दिन करी में नहीं होता, बल्कि प्रति क्षण परिवर्तन होता जाता है, परंतु मालूम नहीं होता। उस वस्तु का दूसरा प्रणाम देखकर अनुमान किया जाता है कि यह वस्तु एक साथ नहीं बदलती, हर क्षण बदलती रही है। जैसे नया कपड़ा संभालकर संदूक में रखने पर भी कालांतर में पुराना जीर्ण हो जाता है, परंतु यह जीर्णता रूपी प्रणाम क्रम एक या दो क्षण या एक दो दिन में नहीं मालूम होता। जब भी प्रति क्षण में प्रणाम क्रम हुआ है, परंतु इतने सूक्ष्म रूप से प्रणाम कम हो रहा था कि देखने में नहीं आता। अंत में बहुत से प्रणाम कर्मों का स्थूल रूप में होने पर दिखाई देने लगा। इसी तरह गुणों के कर्म परिणाम और लक्षण प्रणाम का क्रम है। अवस्था प्रणाम क्रम धीरे धीरे होता है और उसका अंतिम फल जाना जाता है। जैसे बालक जो कुछ समय देखने के बाद युवा होना वृद्ध होने से उसके शरीर की वृद्ध अवस्था मालूम होती है, उससे मालूम होता है कि प्रति क्षण उसका अवस्था प्रणाम क्रम होता रहा है जो अंत में मालूम होता है। अतः क्रम का ज्ञान अंत में होने से प्रणाम प्रांत और प्राण प्रणाम प्रांत निर्ग्रहज कहा गया है और प्रत्येक क्षण से स्वंद होने के कारण क्रम इसीलिए क्षण प्रतियोगी है। जान लेना अगले सूत्र में केवल का स्वरूप वर्णन कर शास्त्र की समाप्ति करते हैं। परिषार्थ शून्याना गुणाना प्रतिपरस्वा केवलं स्वरूप प्रतिष्ठा वा चित शक्तेरिति। परिषार्थ से शून्य हुए गुणों का अपने कारण में लय होना अथवा चित शक्ति का अपने रूप में अवसित हो जाना केवल है। गुणों की प्रवृत्ति पुरुष के भोग अपवर्ग के संपादन के लिए है, यही उसका भोग अपवर्ग पुरुषार्थ है। इसको पूरा करने के लिए बेगुण बुद्धि शरीर इंद्रियां मन अहंकार पांच तन मात्रा और शब्द आदि विषयों में परिणत होते हैं। जिस पुरुष को भोग अपवर्ग दिला देते हैं उसके लिए फिर कोई काम शेष नहीं रहता। तब पुरुषार्थ के संपादन से कृतार्थ हुए प्रतिलोम प्रणाम से अपने कारण में लय हो जाते हैं, वही गुणों का कैवल्य है। प्रतिलोम उल्टा प्रणाम से यह तात्पर्य है कि व्युत्थान समाधि एवं निरोध के संस्कार मन में लय हो जाते हैं। मन कार में कार बुद्धि में बुद्धि प्रधान प्रकृति में लय हो जाती है, इसी को कैवल कहते हैं। अथवा चेत शक्ति दृष्टा पुरुष का अनादि अविद्याकृत संयोग का अभाव हो जाने पर अपने शुद्ध असंग कूटस्थ निरावरण आनंद स्वरूप अवस्था में प्रतिष्ठित हो जाना पुरुष का कैवल है। जीव ईश्वर की अनुकंपा से शुद्ध रूप होकर आनंद स्वरूप ईश्वर में प्राप्त होता है। इसलिए ईश्वर परिनिधान ईश्वर का चिंतन योग शास्त्र में विधान है। इति पतंजल योग दर्शन कैवल पाद समाप्त। पतंजल योग दर्शन समाप्त। वाहेगुरु जी का खालसा। वाहेगुरु।